हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो इस कान के कांग्रीगेशनल प्रीचिंग के केंद्र फ्लैग में आप सबका रविवार के सत्संग में स्वागत है। आज एकादशी का बहुत भक्ति जनक दिन है। एकादशी माधव तिथि भक्ति जननी जतन करी पालन करो। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत प्रेम से शिक्षा देते हुए कहते हैं माधव तिथि भक्ति जननी। ये माधव तिथि, माधव भगवान माँ कहते हैं लक्ष्मी को, धव कहते हैं पति को, लक्ष्मी पति भगवान माधव गोविंद माधव। तो माधव तिथि जो दिन माधव का है, भगवान का है, एकादशी का दिन है, उसको जतन करके पालन करो, मतलब बड़ी सावधानी से एकादशी का पालन करो। क्यों? भक्ति जननी भक्ति को जन्म देती है। भक्ति का अर्थ होता है भगवान से प्रेम करना और प्रेम में भगवान की सेवा में संलग्न होना। प्रेम के साथ भगवान की सेवा करने को भक्ति कहते हैं। भक्ति का रूप प्रेम है, भक्ति का स्वरूप अमृत है। अमृत और प्रेम भगवान की सेवा में प्राप्त करने के लिए ये एकादशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो साल में 12 महीने में 24 एकादशी आती है, तो कभी 25 भी होती है आगे पीछे दिन के कारण, और हर एकादशी का कोई विशेष नाम है और हर एकादशी का कोई विशेष फल भी है। वैसे हमारे शास्त्र में तीन प्रकार के शिक्षाएं लिखी हुई है। एक तो शास्त्र का सीधा उद्देश्य होता है कि इस शास्त्र के अध्ययन करने से, समझने से, सुनने से, पढ़ने से भगवान की प्रेम भक्ति मिलती है। जैसे भागवत में लिखा है श्रोणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयांतस्थानीय भद्राणी धुनोति सुहृद सताम। भक्ति के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा भागवत में है। सुनना चाहिए, श्रोणवताम क्या सुनना चाहिए, स्वकथा कृष्ण, जो कथा भगवान श्री कृष्ण ने कही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी कथा कही है? भगवद गीता। भगवान ने अपने मुख से भगवद गीता कही है, उस भगवद गीता को सुनना चाहिए। तो क्या लाभ होगा सुनने से? अगर हम भगवान की कथा सुनेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे जो श्री कृष्ण ने कही है, अथवा जो श्री कृष्ण के विषय में कथा है उसको हम सुनेंगे, तो हमको क्या लाभ होगा? हृदय अंत स्थानीय भद्राणी, जो हमारे हृदय में कितने ही अशुभ चीजें पड़ी हैं, अमंगल चीजें पड़ी हैं, अभद्र चीजें पड़ी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का कचरा पड़ा है, धुनोति उसको धो देगा, उसको साफ कर देगा, हृदय के मैल को साफ कर देगा। कौन? सुहृद सताम। सताम कहते हैं भक्त को और सुहृद कहते हैं जो शुभ चिंतक है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं सुहृद सर्वभूतानाम, मैं सारे जीवों का सुहृद हूँ, मैं सबका शुभ चिंतक हूँ, मैं हरेक के हृदय में नित्य निवास करता हूँ और सदा के लिए उनका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहता हूँ। केवल वो मुझसे एक बार मेरी ओर देख के कहें कि हम तुम्हारे हैं, ये बात भगवान श्री रामचंद्र रामायण में कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में जब आकाश में स्थित विभीषण अपने चार मंत्रियों के साथ कह रहा था श्री कृष्ण मैं आपके शरण में आया हूं, उस वक्त अंगद ने कहा कि ये तो रावण का भाई है, इसको बंदी बना लो। तो सुग्रीव ने कहा ये तो शत्रु के पक्ष का है, इसको तो कभी शरण में नहीं लेना चाहिए। तो हनुमान बोल उठे कि नहीं, मैं गया था लंका में, इसकी पत्नी इसकी बेटी सीता का सहयोग करते हैं और इन्होंने भी मुझे रावण को कहा था दूत को नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये आपका हितेशी है, इसलिए इसको शरण में लेना चाहिए। तो राम जी ने सबका सभा बुलाया और सबसे पूछा कि आप सबका क्या राय है। तो हर एक ने ऐसे राय दिया, किसी ने कहा शत्रु का भाई शरण में मत लो, किसी ने कहा कि इसको बंदी बना के रखना चाहिए, देखना चाहिए इसका व्यवहार कैसा है। हनुमान ने कहा नहीं अच्छा है, इसलिए शरण में लेना चाहिए। लेकिन तब राम जी ने जो शब्द कहे कि एक बार कोई कह दे, राम जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूं सुकृद, सुकृद सुकृद मतलब एक बार, अहम याचते अहम त्वाम परपना, अगर कोई कहे कि मैं आपका हूं एक बार बस, उसको मैं सबसे रक्षा का वरदान देता हूं, ये मेरा वचन है। वो बुरा है ये मैं नहीं देखता हूं, वो अच्छा है ये मैं नहीं देखता हूं। वो एक बार कहता है कि मैं आपके शरण में आ गया हूं तो निश्चित रूप से मैं उसकी रक्षा करता हूं। इदम में व्रतम, भगवान राम कहते ये मेरा व्रत है, ये मेरा वचन है, एक बार कोई कह दे कि मैं तेरा हूं बस, फिर उसका सब चिंता दूर हो गई, फिर उसकी रक्षा करने का धर्म मेरा, ये मेरा धर्म है। तो भगवान हमारे सबके हृदय में ऐसे परमात्मा के रूप में बैठे हैं और केवल हमको साधु से सत्संग सुनकर शास्त्र का श्रवण करके और शुद्ध हृदय से भगवान को कहना चाहिए भगवान हम तुम्हारे हैं बस। इतना हमारे को एक कहने के लिए भगवान के सामने खड़े होकर कहो कि हम तुम्हारे हैं। इस दुनिया में कोई आपका है कि नहीं है? आप किसी को अपना मानते हो? हाँ, कोई आपको अपना मानता है कि नहीं मानता है? दुनिया में किसी को तो आप भी अपना मानते हो ना, कोई आपको अपना मानता है ना। तो फिर अगर आपको किसी को अपना मानना है तो भगवान को अपना मान लो, और किसी को आप अपना मानते हो तो भगवान को अपना मान लो। आप किसी के होना चाहते हो तो भगवान के हो जाओ, और किसी को अपना मानोगे तो वो तुम्हारा साथ सारी उम्र नहीं दे पाएगा। सारी उम्र क्या, आजीवन तुम्हारा साथ नहीं दे सकता है। तो हम दो एक दिन से कथा बता रहे हैं, सिर्फ आपको फिर एक कथा बता रहे हैं। ये एक राजा था, चार उसकी पत्नियां थी, एक का नाम काया था, एक का नाम कंचन था, एक का नाम कामनी था, एक करुणा थी। राजा का काया से इतना प्रेम था कि उसको कभी छोड़ता नहीं था, हमेशा अपने साथ ले जाता था। राज में जाए, काज में जाए, युद्ध में जाए, शिकार पे जाए, कहीं भी जाए काया को साथ रखता था, इतना उसका काया से प्रेम था। कंचन तो इतनी उसको पसंद थी कि उसको रोज देख के और बड़ा खुश होता था और किसी और को देखने भी नहीं देता था, उसको तो सुरक्षित रखता था अपने पास। कामनी के साथ भी समय समय के ऊपर आता जाता, मिलता, प्रेम करता, लेकिन करुणा से कभी बात तक नहीं की, करुणा की ओर देखा नहीं, करुणा के महल में गया नहीं, करुणा के बारे में कुछ पूछा नहीं। समय के साथ राजा बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, मरने का समय आया तो चारों रानियां पास में खड़ी रो रही थी। तब राजा अचानक कहने लगा अब मुझे मालूम नहीं कहां मैं जा रहा हूं, मुझे तो अंधकार दिखाई दे रहा है, मुझे भय लग रहा है। काया, काया मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, हमेशा मेरे साथ रखा था, आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, मैं अकेला नहीं जा सकता। तो काया कहती है महाराज मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। महाराज ने कहा मैंने कभी आपको नहीं छोड़ा, हमेशा आपका देखभाल किया, कभी हमने अपने से अलग नहीं किया, आज आप मेरे साथ नहीं चलोगी? नहीं महाराज, कंचन तुम तो मेरे साथ चलो, मैंने तुमको कितना सुरक्षित रखा, प्रतिदिन तुम्हारे को देखा, किसी को देखने का मौका भी नहीं दिया, कंचन कहती है महाराज आप जाइए मैं किसी और से विवाह कर लूंगी। अब तो राजा बड़ा दुखी हो गया कि जिसको मैंने अपना माना वो उसमें से कोई साथ देने वाला नहीं है। कामिनी तुम तो मेरे साथ चलोगी ना। महाराज शरीर छूटने के बाद शमशान तक मैं जाऊंगी आपके साथ, आगे नहीं चल सकती, फिर मेरे को बहुत काम है। अब राजा दुखी हो गया कि जिनको सारी उम्र मैंने अपने जीवन में अपना माना, प्रेम किया, जिसको जिसके साथ उठा बैठा खाया पिया, उनमें से एक भी मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है। और फिर राजा कहता है मैं किस मुंह से कामिनी को किस मुंह से मैं जाकर करुणा को कहूं कि करुणा तुम मेरे साथ चलो। मैं तो एक दिन भी उसके पास नहीं गया, एक दिन भी उसको मैंने नहीं कहा कि तुम मेरी है, मेरे हो, मेरी हो। इतनी देर में करुणा स्वयं आ गई राजा के पास और पूछा महाराज आप मुझसे ये प्रश्न नहीं पूछेंगे जो सबसे पूछा। महाराज को लज्जा आ रही थी, आंखों में आंसू था, कहा कुछ भी नहीं बोला। तो करुणा बोली महाराज आप न पूछिए तो भी मैं कहती हूँ कि मैं आपको अकेला जाने नहीं दूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी, आप जहां भी जाएंगी आप चिंता मत कीजिए मैं आपके साथ हूं। तो महाराज हाथ जोड़ के कहा करुणा मैं आपका अपराधी हूं, मैंने कभी भी आपकी ओर नहीं देखा, आज मुझे आप अपने शरण में ले लो, इस रास्ते में मेरा सहायता करो। और राजा यहां से चल बसा। कैसे लगी कथा आपको? ये सब आपकी और मेरी कथा है, ये राजा हम हैं, ये राजा हम हैं, ये माता जी भी राजा हैं और आप प्रभु जी भी राजा हैं, ये शरीर काया हमारी ऐसी रानी है जिसको हम कहीं नहीं छोड़ते हैं, साथ साथ लेकर घूमते हैं, जहां भी जाएं बाजार में जाएं दुकान पे जाएं मकान पे जाएं घर में जाएं बाहर जाएं साथ रखते हैं, कितना इसके लिए कपड़ा लेते हैं, खिलाने पिलाने का प्रबंध करते हैं, बड़ा सजाते हैं संवारते हैं, लेकिन अंत समय कहते हैं तुम मेरे साथ चलो। काया बोलती है मैं साथ नहीं चलूंगी। किसी के साथ शरीर गया है आज तक? नहीं गया। अब दूसरी रानी कंचन धन है, अब धन को तो हम छुपा के रखते हैं, किसी को दिखाते नहीं है, रोज गिन गिन के खुश होते हैं, जब अलमारी में बंद करते हैं कोई न देखे, मुझे बड़े अच्छी लगती है। और उसको कहो मरते समय तुम साथ चलोगा तो वो तो कह रही तुम्हारे जाते ही मैं दूसरे के पास चली जाऊं, वो तो दूसरे का हो जाएगा धन, आपने आपने आंख बंद की नहीं, दूसरा बोलेगा ये मेरा है, वो तो किसी और के पास जाएगा, तुम्हारा तो होने वाला नहीं। अब राजा कहता है इसी को मैंने सारी उम्र इकट्ठा करने का प्रयास किया और आज ये मेरे साथ नहीं चल रही है। तो कामिनी की ओर प्रार्थना की कि तुम चलोगी, कामिनी रिश्ते जा रहे हैं जिनके घर आते हैं जाते हैं खाते हैं पीते हैं, लेकिन मरने के समय वो भी कहते हैं शमशान तक तुम्हारे पास चलेंगे, उसके बाद तो हमारे को अपने काम है, तो ये तो हमारे तीन तीन के साथ हम निभाने का प्रयास करते हैं, शरीर को सजाने का, धन को कमाने का और रिश्तेदारों से निभाने का, लेकिन इनमें से एक भी हमारे साथ जाने वाला नहीं। और जो हमारे साथ जाने वाला करुणामय भगवान है, जो हमारे हृदय में बैठा है परमात्मा के रूप में, उसको तो सारी उम्र हम कभी पूछता भी नहीं, और अंत समय वो ही कहता है कि अब तुम्हारा कोई नहीं है मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। और उस वक्त हमको ध्यान आता है कि अरे यही तो हमारा असली सज्जन था, बाकी जिसको हम अपना मानने का झूठा प्रयास कर रहे हैं उसमें से कोई भी हमारा है नहीं। आप अब किस किस को अपना मानते हैं पहले बताओ, घर को अपना मानते हैं है ना, मेरा घर है, उसके अंदर चोर अंदर आ जाए तो घर बोलेगा बाहर निकलो यहां क्यों आयो, ये किसका घर है बोलेगा हा? किसी को बेच के दे जाओ तो घर चिल्लाएगा कि मुझे क्यों छोड़ के जाते हो, नहीं ना। तो आप अपना मानते हो लेकिन वो आपको जानता है, घर जिसको आप अपना मानते हो वो आपको जानता नहीं, ये सोना है ये बाला है ये मंगलसूत्र है इसको सब अपना मानते हो हाँ, ये कहीं गिर जाए तो आपको बुलाता है कहाँ जा रहे हो मेरे को ले चलो, तुमको तो गिफ्ट में दिया था, ये तो शादी के समय तुम्हारे गले में डाला था, कभी याद करता है बुलाता है आपको हाँ। जिन जिन को दुनिया में अपना मान के रखा है उसमें से कोई भी आपको नहीं जानता, और आपको झूठा उनको अपना मानने का प्रयास कर रहे हो। ये तो हुई चीजें दुनिया की, और जिन रिश्तेदारों मित्रों बंधु बांधुओं को अपना मान के रखा है उनको भी आप वो आपको पहचानता नहीं है, वो आपको पहचानते ही नहीं है। वो अगर आपको पहचानते हैं तो आजकल हमारे दादाजी का शरीर हमारे घर में होता ना, शरीर में से आत्मा निकल गई तो बोलते नहीं इसको ले चलो 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 चलो, घर में नहीं रखते उसको। तो जब तक जिंदा है उसमें आत्मा है तब तो उससे हम काम निकालते हैं, लेकिन वो है शरीर तो है नहीं, तो हमने उसको जीते जी कभी पहचाना नहीं कि वो कौन है। कभी हम जो जिनको हम अपना मानते हैं वो हमको पहचानते नहीं है, जिनको हम अपना समझ के बैठे हैं वो तो हमको जानते भी नहीं है। लेकिन भगवान जिसने कभी हमारा साथ छोड़ा नहीं है उसकी ओर कभी हमने देखा नहीं, उसको कभी हमने कहा नहीं है कि हम आपके हैं अथवा आप हमारे हो। अगर किसी को आपको अपना कहना है या आपको किसी का बनना है तो भगवान को अपना कहिए और भगवान को अपना बनाइए या भगवान का बन जाइए, दोनों रिश्ते भगवान से जोड़ लीजिए। इसलिए भगवान सर्वलोक महेश्वरम, तीनों लोकों के ईश्वरों का ईश्वर होते हुए भी इस धरती के ऊपर छोटे बालक के रूप में प्रकट होके आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि तुम रिश्ते नातों में फंस गए हो, तुम संबंध मोह में फंस गए हो, तुम्हारे जो संबंध तुम्हारे को दुनिया में फंसा देते हैं तुम वो संबंध मेरे से जोड़ लो। तुम किसी को बेटा मानते हो और वो बेटा तुम्हारे को बड़ा होते ही शादी करके घर से सब सामान खर्चा करा के चला जाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा डाकू दिन धारे जो सबका घर का लूट जाए वो लड़का है, बेटा है। सारी जिंदगी की कमाई शादी के सामने खर्चा कराया, फिर पत्नी को लेके घर से चला गया और जाके कहीं और रहेगा, सब कुछ लूट के ले जाता है, दिन को दिन खुले दिन को जाता है। किसी और इससे ज्यादा बड़ा और कोई डाकू नहीं है और कभी सेवा नहीं करता है। कोई भाग्यशाली हो किसी का कोई सेवा करे तो करे, नहीं तो बस। और हम भी खुश है हमारा लड़का इंग्लैंड गया, तेरे किस काम का? वो इंग्लैंड जाए कि अमेरिका जाए, तेरे काम का तो है नहीं। तो ये रिश्ते नाते जो हैं, जो संसार में हमारे बंधन का कारण है, भगवान इसलिए छोटे मन के इस धरती पे आते हैं कि हम उसको अपना बेटा बना लो, कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए अभी भी भारतवर्ष में प्रायः जितने आर्य का मतलब वेदों की संस्कृति को मानने वाले हैं, सनातन वैदिक धर्म के जो अनुयायी है, उन सब के घर में प्रायः छोटा सा लड्डू गोपाल होता है। घर में छोटा लड्डू गोपाल सबके घर में होता है और उसको बालक समझ के उसकी घर में माताएं पूजा करती हैं। सबसे ज्यादा मोह का रिश्ता तो बच्चे से होता है, तो भगवान कहता है मुझे ही बच्चा बना लो। अब मैं ऐसा बच्चा हूं कि कभी आपका साथ छोड़ूंगा नहीं, कभी आपसे कुछ लूंगा नहीं, हमेशा आपको दूंगा। सौहृद का मतलब होता है जो आपको सुखी देखना चाहे, आपसे कुछ भी न चाहे, आपसे कुछ नहीं चाहिए उसको, केवल आप सुखी रहो यही उसकी इच्छा है, इसको सौहृद कहते हैं। तो भक्ति माधव तिथि भक्ति जननी जतन करी पालन करो, एकादशी का दिन भगवान की भक्ति के लिए, भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए ये उत्तम दिन है। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बड़े जतन के साथ इसका पालन करो। तो मैं बात ये कर रहे थे हम के साल में 25 एक एकादशी आती है और हर एकादशी का नाम है और हर एकादशी का कुछ फल है। बात हम ये कर रहे थे शास्त्रों के अंदर कुछ तो शास्त्र में ऐसे लिखा है कि आप इस शास्त्र का श्रवण करोगे, नाम जप कीर्तन करोगे तो भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। कुछ शास्त्र का ऐसा वर्णन होता है कि अगर ऐसे नहीं करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, ऐसे भी शास्त्रों में वर्णन है। जैसे पुत्र शब्द जो निकला है, पू नाम का एक नरक है, उसमें जानने से बचाने के लिए पीछे पुत्र होना चाहिए जो पिंड दान करे, जो पो नाम के नरक से तारे उसको पुत्र बोलते हैं। पुत्र की परिभाषा ये है, पो नाम का एक हेल है, नरक है, उसमें जाने से जो बचा दे उसको पुत्र बोलते हैं। तो पुत्र, तो कुछ ऐसे शास्त्र हैं, शास्त्र के नियम है कि ये नहीं करेंगे तो हमको दंड भोगना पड़ेगा, इसको भयायक भय दिलाना वाला। बहुत से लोग भय के साथ, जैसे सरकार का भय नहीं हो तो सब बदमाश हैं, अगर सरकार का भय न ही हो तो आदमी सब चोर हैं। ये तो कोई भय है इसलिए आदमी नियम से चल रहा है। तो ऐसे शास्त्र ने भी बहुत जगहों पे, ऐसे तो भागवत के पांचवें स्कंद में क्या काम करने से कौन सा कब नरक में जाएगा उसका बहुत बड़ा वर्णन है कि ये अपराध करने से ये नरक है, ये अपराध करने से ये नरक है। तो ये वर्णन है अपनी जगह पे शास्त्रों में। और तीसरा शास्त्रों के अंदर होता है श्रुति फल। श्रुति फल का मतलब ये है कि अगर आप ये कार्य करोगे तो इसका फल आपको ये मिलेगा। तो हर एकादशी का मुख्य फल तो भगवान की भक्ति है, माधव तिथि भक्ति जननी। फिर भी संसारिक दृष्टि से हर एकादशी का कोई विशेष फल है। तो आज जो एकादशी है, श्रावण शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, ये जो ब्राइट नाइट श्रावण की जो एकादशी है, इसका एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। ये एकादशी पुत्र प्राप्त कराने के लिए पुराने जमाने में युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था भगवान श्री कृष्ण से कि इस एकादशी का महत्व क्या है, इस एकादशी का फल क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महीपाल नाम का राजा था, मही पृथ्वी को कहते हैं, महीपालक या महीपति महाराज राजाओं को कहा करते थे। राजा बहुत बड़ा अच्छा भला आदमी था, उसको सब सुख सुविधाएं थी, राज था, लेकिन पुत्र नहीं था, तो बड़ा दुखी था। बड़ी उम्र होने लगी, अपने ब्राह्मणों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया कि मैं इस जन्म में तो कोई पाप किया नहीं, धर्म के किसी काम को मैंने कभी छोड़ा नहीं है, हमेशा मैं धर्म किया, दान किया, ब्राह्मण का सम्मान किया, फिर भी अब ये समय आया है, मेरी उम्र पूरी होने वाली है और पुत्र मुझे नहीं है, आप लोग कुछ ऐसा रास्ता ढूंढिए शास्त्रों में कि मेरा उद्धार हो। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणों ने मानते थे कि राजा ने हमको पुत्र के समान माना है, हमको अपने बच्चे के समान पालन पोषण किया है, तो हमको इसका उद्धार करना चाहिए। चारों ओर से शास्त्रों का और साधुओं का दर्शन करने के लिए और लोमस ऋषि के पास जाके बैठे, लोमस ऋषि को प्रणाम किया। उसने कहा, आप आए हैं, बताइए आपकी समस्या क्या है, मैं आपसे प्रश्न हूं। बोला, समस्या हमारे राजा को पुत्र नहीं है। लोमस ऋषि आंखें बंद करके थोड़ी देर ध्यान में बैठा और कहा, आपके राजा पूर्व जन्म में, इससे पहले जन्म में एक व्यापारी थे और गांव-गांव शहर-शहर में व्यापार तो करते थे। एक बार बहुत प्यासे थे और पानी के लिए पीने को जा रहे थे तालाब पे, तो एक गाय अपने बछड़े के साथ पानी पीने आ रही थी, उसने गाय को वहां से भगा दिया और स्वयं ने पानी पिया। उस गाय को पानी न पीने देने के कारण बछड़े के साथ उसको गाय और बछड़े का साप के पाप, उस पाप के कारण उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। तो जो भी है, अपराध जाने अनजाने में हो जाता है, लेकिन उसके कर्म अच्छे थे इसलिए उसको राज तो मिला है, लेकिन पुत्र प्राप्ति उस गाय के बछड़े के, तो जीव है वो भी प्यासा है, उसको पानी नहीं पीने दिया। लोमस ऋषि ने जब ये कहा, ये श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं, तो उस वक्त ब्राह्मणों ने कहा, महाराज अपराध तो होता है, सबसे होता है इस दुनिया में, तो उसका कोई प्रायश्चित है, उसको किस तरीके से हम निवारण करें कि राजा का ये पाप धुल जाए। तो लोमस ऋषि ने कहा, श्रावण के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी, वो आप सब लोग एकादशी का व्रत रख के रात को जागेंगे और भगवान का कीर्तन करेंगे। ये श्रीधर महीना है, श्रावण का श्रीधर महीना है, भगवान का रात को जागरण करके और भगवान का कीर्तन करो, और सुबह जब एकादशी खोलने का समय है तो एकादशी का फल महाराज को अगर दोगे तो महाराज इस पाप से निवृत्त हो जाएंगे और उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। और युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण भगवान कहते हैं। ऐसे ब्राह्मणों ने वापस आके राजा में, राज में सबने ये एकादशी को रखा, रात को कीर्तन किया आजकल भी इस्कान के बहुत से मंदिरों में पाश्चात्य देशों में एकादशी के दिन रात को भक्त लोग कीर्तन करते हैं, रात सारी बैठ के कीर्तन करते हैं, सुबह 4 बजे मंगल आरती तक कीर्तन करते हैं, तुलसी की पूजा करते लाते हैं घर से भगवान के लिए माला बनाकर रात को 12 बजे तक। तो मैं अभी कहां कुवैत में गया था, वहां मुस्लिम कंट्री में रहते हुए भी जो रहते हैं वहां इंडियन भक्त वो रात को कीर्तन करते हैं और भगवान को ये एक दो दिन महीने में आते हैं जो हमारे लिए मानो जैसे गाड़ी की सर्विस करानी होती है टाइम पे ताकि गाड़ी ठीक चले, ऐसे हमारी आध्यात्मिक महीने में 2 बार सर्विस एकादशी के भोजन से थोड़ा परहेज करके कीर्तन भजन ज्यादा करना और बैठ के तो 15 दिन में हमारी गाड़ी ठीक चल जाती है। नहीं तो ये दुनिया में ये सर्विसिंग स्पिरिचुअल सर्विसिंग है तो ऐसे किया तो निश्चित रूप से उस राजा का उद्धार हो गया। ऐसे इस एकादशी का फल भविष्य पुराण में लिखा है और आज का दिन आज के दिन से विशेष रूप से वृंदावन में भगवान श्री राधा गोविंद को बाहर उत्सव मूर्ति को लाते हैं और झूलन झूला बनाते हैं और झूले में आज से लेकर पूर्णिमा तक ये भगवान बाहर झूले में रहेंगे और झूले फूलों के बनाते हैं, चांदी के बनाते हैं, सोने के झूले भी बने हुए हैं वृंदावन में कुछ मंदिरों में। जो ये 4 दिन 5 दिन कुछ तो जो पहले तीसरा दिन गया उसको तीज बोलते हैं, श्रावण की तीज, तीज का मतलब तीसरा दिन, उस दिन से ये उत्सव चलता है और तीज हरियाली तीज कहते हैं वृंदावन में। और उस दिन बांके बिहारी के दर्शन के लिए नहीं तो भी 100,000 के हिसाब से लोग आते हैं, शहर में कोई रिक्शा भी नहीं चलता है, लोग पैदल एक दूसरे के साथ चलते हैं तब भी रास्ता नहीं मिलता है और झूला सोने का निकलता है उस दिन और भगवान को सोने के झूले में दर्शन करते हैं और झूलाते हैं। अब यहाँ के तो आपका देश तो ऐसा है हर 15 मिनट में यहाँ सीजन बदलती रहती है, हर 15 मिनट में कभी बरसात है कभी सर्दी है कभी गर्मी है, इस देश का तो मौसम कोई है नहीं। लेकिन भारत में मई में अप्रैल के एंड में गर्मी शुरू हो जाती है तो पहला उत्सव आता है कि बहुत गर्मी लगती है तो क्या करना चाहिए, तब चंदन यात्रा तब आती है, चंदन घिसते हैं पूरा महीना और चंदन के मड़े मटके भरते हैं और भगवान को चंदन का लेप लगाते हैं और वो 21 दिन तक चंदन का लेप चलेगा, अक्षय तृतीया से लेकर और 21 दिन तक भगवान को चंदन का लेप लगेगा और चंदन लगेगा और थोड़ी सी हवा आएगी बहुत ठंडा लगेगा, तो 21 दिन तक ये चंदन यात्रा चल रही है गर्मी में भगवान के उत्सव की। अब गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि चंदन लगाने से भी जो है वो शरीर ठंडा नहीं होता है तो स्नान यात्रा आती है, तब भगवान को स्नान कराने के लिए बाहर लाते हैं और जगन्नाथ की स्नान यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है और भगवान भी उस समय में जाके जमुना के अंदर अपने ग्वाल बालों के साथ जल में क्रीड़ा करते थे और स्नान यात्रा पूरी होती है तब कहते हैं अब तो बरसात की मौसम आ गई और इतनी बरसात आने लगती है कि अब भगवान अंदर बैठते हैं तो बड़ा गर्मी लगती है तो रथ यात्रा के ऊपर निकल के बाहर हवा खाते हैं तो बाहर निकल के आते हैं। अब रथ यात्रा पूरी हो गई, अब हवा बरसात के कारण इतनी ह्यूमिड और थिक होती है और चलती भी नहीं है, अब क्या करना चाहिए, अब स्वयं को चलना पड़ता है तो झूलन यात्रा आती है। अब झूलन में अब हम हवा तो नहीं चलती, हम ही चल के अपने आप को ठंडा करते हैं तो ये झूलन यात्रा का उत्सव चलता है और ये उत्सव तो झूलन यात्रा का असल राधा गोविंद देव जी के लिए झूलन यात्रा है लेकिन इसकी इतनी बड़ी महत्व इसका इतना बड़ा है कि पूरे भारत में विशेष रूप से कुछ क्षेत्र राजस्थान गुजरात आदि में जो नवविवाहित लड़कियां होती है ना अपने ससुराल से इन दिनों में श्रावण के भाई जाता है घर के वापस बुला के लाता है माता पिता के घर में आती और तब घर में झूले बंधे जाते हैं और झूले में झूलने के ये दिन होते हैं। ये बहुत बड़ा उत्सव श्रावण का लड़कियों का बहुत उत्सव, उनके व्रत श्रावण के होते हैं, झूले होते हैं। राधा रानी को उनका भाई श्रीधामा लेने नहीं आया, 2-3 दिन और हो गए ज्यादा, तो किसी जाते हुए को बरसाना में राधा रानी ने संकेत भेजा कि मेरे पिता ने मेरी माँ ने मेरे भाइयों ने मुझे भुला क्यों दिया है, ये झूलन का समय आया है, मैं तो अपने घर माता पिता के घर जाना चाहिए। तो जब वृषभानु को ये समाचार मिला तो उसने श्रीधामा को भेजा, श्रीधामा को कहा कि माँ कीर्तिदा ने बहुत सारा गिफ्ट भेजी राजा रानी की सास जटिला के लिए कि वो गिफ्ट देखेगी तो छुट्टी देगी, नहीं तो बहू को छुट्टी नहीं देगी। तो सुधामा उधर गया, उसको देख के राजा रानी बड़ी प्रसन्न हुई और उसने कहा आप तो बहन को ले जाएंगे, श्रावण का महीना आया है, श्रावण में सब अपने घर ले जाते हैं। तो जैसे ने कहा नहीं नहीं यहाँ बहुत काम है घर का, तो उसने ये सब गिफ्ट माता जी ने आपके लिए बड़े उपहार भेजे है, सब उपहार देखे। बोला ठीक है ले जाओ जल्दी वापस छोड़ के जाना। तो राजा रानी को फिर सुधामा वापस बरसाना ले गया। बरसाना में सखियों ने झूला लगाया, झूले के अंदर राधा और गोपियां झूलने लगी। तो श्री कृष्ण नंदगांव से रोज कभी गोपी बनके, कभी एक गोपी बनके, कभी चूड़ी बेचने वाला, कभी कुछ और बेचने वाला बनके आए उधर गोपी, और उस गोपियों के साथ झूले में झूले झूला दे। तो कभी राधा रानी को झूला देते हुए एकदम बहुत जोर से ऐसा झूला दिया, राधा रानी डर गई और श्री कृष्ण ऊपर चढ़ गए झूले में, और डरती हुई राधा रानी ऐसी चपक गई, भगवान से चपक गई। तो श्री कृष्ण को ये झूलन यात्रा इसलिए बहुत बहुत अच्छी लगती है कि इस झूलन में एक तो गर्मी की मौसम में उनका उत्साह है, तो और फिर सखियां बैठ के उनको बिठा के सुंदर झूला बना के और उनको झूलाती रहती हैं। तो ये आज से ये झूलन यात्रा 5 दिन के लिए हमारे इस्कान के मंदिरों में बलराम पूर्णिमा तक झूलन यात्रा रहेगी, और कुछ कुछ मंदिरों में तो ये 15 दिन चलती रहती है। तो ये दो उत्सव इस वक्त, आज एकादशी का दिन तो आज है, लेकिन आज से झूलन यात्रा वृंदावन में आज इस वक्त बहुत बड़ा उत्सव होगा। आरती शाम की 4:30 बजे की हो जाएगी, फिर ठाकुर राधा श्याम सुंदर को बाहर लाएंगे, झूला बहुत सुंदर चांदी का झूला, उसके ऊपर भी चांदी का झूला बना हुआ है, फूलों का सजाएंगे। और सबसे बड़ा है कि हर एक आदमी को निकट जाके भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है, नहीं तो मंदिर में अंदर जब ठाकुर जी स्थापित है तो कोई अंदर तो नहीं जा सकता है, पुजारी ही पूजा करता है। लेकिन इन दिनों में लाइन में सब लोग आएंगे, भगवान को झूले को ऐसे झूलाएंगे, फूल भगवान को अर्पण करेंगे, कोई फल कोई फूल। और जैसे प्रभुपाद ने लिखा है कि झूलन के दिन भगवान को झूले में झूलाए और सब जो आए उसको प्रसाद दिया जाए। तो इस तरफ जैसे बाहर आएंगे तो प्रसाद फल है, कुछ जो भी ड्राई प्रसाद पड़ा होता है हरेक को प्रसाद दिया जाएगा, हरेक झूले को भगवान का फूल चढ़ाएगा, माला चढ़ाएगा। और ये ऐसा सुंदर उत्सव अब ये चलेगा 5 दिन। तो आज झूलन यात्रा भी आज से शुरू हो रही है। कल हमारे मुख्य आचार्य सठ गोस्वामी में रूप गोस्वामी का डिसअपियरेंस डे है और गोणीदास पंडित का डिसअपियरेंस डे कल आए, कल द्वादशी शुक्ल द्वादशी के दिन गोरीदास पंडित जो सुबल सखा कृष्ण के सखा, सुबल सखा थे कृष्ण लीला में, वो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में गोरीदास पंडित बन के आए, जिनके घर में जब गौर नेता आए गए तो उन्होंने कहा कि आप यहां से जाइए मत। तो बोले क्या? तो बोला हम तो आपके घर में नीम के पेड़ में सदा रहते हैं। तो वो समझ गए कि इस नीम के पेड़ से इनकी मूर्तियां बना के स्थापित करेंगे। और इसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है कि भगवान का नाम, भगवान का श्री विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम भगवान है, भगवान का जो श्री विग्रह है ये भी भगवान है, भगवान और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। तो उसी नीम से उन्होंने बहुत सुंदर गौर निताय की सुंदर मूर्ति बनाई, और जब उनकी स्थापना की श्री विग्रह की तो नित्यानंद प्रभु वहां थे। अब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जब वहां आए तो उनको कहा आप यहां से नहीं जाएंगे, आप यहां रहेंगे, गोरीदास ने कहा। तो गौर नेता नित्य चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप देखिए आप च्वाइस आप कीजिए, या ये ड्यूटी रहेंगी या हम रहेंगे, आप एक मांग लो जो चाहे वो रहे। तो कहा नहीं हमारे पास आप रहिए। उस वक्त ड्यूटी वहां से चली, वो जो मूर्ति थी वहां से चल के आगे बाहर निकली और ये गौर नेता वहां खड़े होकर ड्यूटी के रूप में स्थापित हो गए। तो ड्यूटी और भगवान के श्री विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, उसका ये सबसे उत्तम और सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है कि वो मूर्तियां चल के बाहर चले गई और वहां आज भी वो अंबिका खलना में उस मंदिर में जहां गोरीदास पूजा करता था भगवान की, वहां गौर निकाय की वो मूर्ति अभी भी स्थापित है। और साथ में सीताराम की मूर्ति भी है, कृष्ण बलराम की मूर्ति भी है और जगन्नाथ बलदेव की मूर्ति है और गोरीदास की अपना भी मूर्ति बनाया है जिसकी पूजा करते हैं वहां के सेवक, और वो वहां अभी भी पेड़ है। और ये गोरीदास पंडित के भाई के दो बेटियां जो नित्यानंद के साथ विवाह हुआ था, जाह्नवा और वसुधा का, और ये गोरीदास का शिष्य जो है हृदय चैतन्य जिसके हृदय में भगवान साक्षात केन्द्र चैतन्य महाप्रभु, और उस हृदय चैतन्य का शिष्य श्यामानंद पंडित जो वृंदावन के अंदर राधा रानी ने उसको अपने हाथ से तिलक लगाया था, बहुत ब्रज का ये गोरीदास पंडित ने ब्रज में इसकी समाधि है। कल गोरीदास पंडित का तिरुभाव तिथि है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला का 12 द्वादश गोपाल में एक मुख्य गोपाल है, और चैतन्य महाप्रभु की लीला में गोरीदास पंडित के रूप में आए थे। रूप गोस्वामी मुख्य भगवान श्री कृष्ण के लीला में राधा के पक्ष की सखियों में ललिता मुख्य सखी है, और ललिता सखी के ग्रुप में जो मुख्य मंजरी है वो रूप मंजरी है, रूप गोस्वामी और रूप मंजरी है। इसलिए सारे गोस्वामियों में रूप गोस्वामी को सबका लीडर हम मानते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में हम रूप गोस्वामी के फॉलोअर रूप अनोगा कहलाते हैं कि हम सब रूप अनोगा हैं। तो कल रूप गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है, और रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात राधा कृष्ण का युगल रूप चल के जगन्नाथपुरी से राम के लिए जाकर रूप और सनातन गोस्वामी को और उनके भाई अनुभव को दर्शन दे के कृपा की थी, और दोनों भाई फिर वहां से रूप गोस्वामी विशेष रूप से वो राजा का मंत्री पद छोड़कर नवाब हुसैन शाह का प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम के ऊपर चैतन्य महाप्रभु से आकर मिले थे, और 10 दिन तक 10 अश्वमेध घाट के ऊपर अकेले रूप गोस्वामी को बिठाकर चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति रस शास्त्र की शिक्षा दी और कहा, 4 विशेष आदेश दिए, जाइए वृंदावन में कृष्ण के लीला के सारे स्थानों को पुनः प्रकट कीजिए, खोज के निकालिए। दूसरा, जो ठाकुर जी जो श्री विग्रह वज्रनाभ ने स्थापित किए थे, भगवान गोविंद देव का, वृंदा देवी का, हर देव का, केशव देव का, इन सब विग्रहों को ढूंढ के निकालिए, कहीं न कहीं ब्रज में है, और सुंदर मंदिर उनके लिए स्थापित कराइए। तीसरा कहा था, सारे वैदिक साहित्य में से भक्ति रस की धारा को शास्त्रों के रूप में आप प्रकाशित कीजिए और भक्ति का प्रचार कीजिए। रूप गोस्वामी ने विशेष रूप से गोविंद देव जी के वज्रनाभ का स्थापित किया हुआ, गोविंद देव जी रूप गोस्वामी को प्रकट होके मिले थे योग पीठ से, जिनका लिए बहुत सुंदर मंदिर आज भी वृंदावन में जो लाल पत्थर का और बहुत भव्य मंदिर बनाया है रूप गोस्वामी के द्वारा, राधा गोविंद देव जी का, और राधा गोविंद देव जी वो ठाकुर जो वज्रनाभ ने स्थापित किए थे आज भी जयपुर में पूजित है। तो ये रूप गोस्वामी की देन है, और उनका लिखा हुआ भक्ति रसामृत सिंधु और अन्य भक्ति के शास्त्र जिनके द्वारा हमारा मार्गदर्शन होता है। श्रील प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु को जो है वो नेक्टर ऑफ डिवोशन करके ट्रांसलेट किया, तीसरे नंबर पे गीता, और फिर कृष्ण बुक और भक्ति रसामृत सिंधु तीसरे नंबर पे ट्रांसलेट किया भक्तों के लिए, के भक्ति के रहस्य को जानने के लिए। रूप गोस्वामी का ये भक्ति रसामृत सिंधु ऐसा शास्त्र है जो सब भक्तों को समय के साथ पढ़ना चाहिए। तो कल रूप गोस्वामी का भी तिरुभाव तिथि है, तो उसका संक्षेप में आपको इसलिए बता रहे हैं कि इनसे प्रार्थना करनी चाहिए, महात्माओं से एकादशी का व्रत करना चाहिए, झूलन यात्रा में भगवान को निकट जिससे जाकर सेवा करनी चाहिए। आज यहाँ आपके तो ये उत्सव होता नहीं है, वरना 5 दिन यहाँ भी झूला, कम से कम संडे को आया है तो झूला करना चाहिए था, सब लोगों को ये सेवा का मौका देना चाहिए था। और आज जहाँ गए थे सत्संग करने वो आपके सुयाक में, तो वहाँ जन्माष्टमी थी इसलिए झूला तो लगाया ही हुआ था, इसलिए सबको कहा कि झूले को हाथ लगा लो, आप इसका शुभ फल ले लो, नहीं तो यहाँ ठाकुर जी का मूर्ति रख के झूले में और ये उत्सव मनाते। तो ये सब उत्सव मनाने से हमारा भगवान से प्रेम बढ़ेगा, हमारा भगवान से संबंध स्थापित होगा। तो हम बात ये कर रहे थे कि कथा सुननी चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण ने कही है अथवा कृष्ण के विषय में है, और कथा सुनने से हमारा हृदय भगवान धो के साफ कर देंगे, और जब हृदय साफ हो जाएगा तो भगवान हृदय में अंदर है वो दिखाई देने लगेंगे, तब हमारे जीवन में भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित होगा। सुनने से भगवान के बारे में सुनने से भगवान से हमारा रिश्ता जुड़ता है और तब हम भगवान की सेवा करने लगते हैं, और जब भगवान की सेवा करने लगते हैं तो फिर आस्ते आस्ते भगवान से प्रेम होने लगता है। तो ये तीन उद्देश्य हैं गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का, संबंध भगवान के साथ स्थापित करना, भगवान का अभिधेय सेवा में लगना, और भगवान की सेवा का प्रयोजन कृष्ण प्रेम। तो ये तीन हमारे जीवन का लक्ष्य है। और ये सनातन गोस्वामी से चेतना महाप्रभु से पूछा था कि साध्य साधन के, साध्य क्या है, क्या जीवन का लक्ष्य है और साधन क्या है, उसको प्राप्त कैसे किया जाए। और तब चेतना महाप्रभु ने यही कहा, संबंध अभिधेय प्रयोजन ये साध्य साधन है। भक्ति के द्वारा भगवान के बारे में सुनो, तब भगवान से संबंध स्थापित होगा, तब भगवान की सेवा करेंगे, जब सेवा करेंगे तो हमारा भगवान से प्रेम जागृत होगा, तब हमारा जीवन का लक्ष्य साध्य प्राप्त होगा। तो आप लोग भाग्यशाली हैं कि कृष्ण भावना अमृत संघ पिछला परम पूज्य अभेशनार भक्तिविदान स्वामी श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद के इस आध्यात्मिक कृष्ण भावना आंदोलन के अंतर्गत श्री कृष्ण भगवान के मुखारविंद से कही हुई भगवद गीता और भगवान श्री कृष्ण के लीला महिमा गुण का वर्णन श्रीमद भागवत से और चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का श्रवण वर्णन करते हैं। आपका जीवन धन्य है। मानव जन्म में और गंभीरता से इस चीज को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। दो एकादशी महीने में निश्चित रूप से पालन कीजिए। अधिक थोड़ा उस समय रात को बैठ के थोड़ा भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए तो जीवन के रुकावटें, दुख तकलीफ, सताप, संताप, संकट, कष्ट, चिंता मुक्त हो जाएंगे, उससे मुक्त हो जाएंगे और भगवान के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, भगवान में अटैचमेंट बढ़ेगी, भगवान से भगवान की सेवा में आपकी रुचि होगी और भगवान से प्रेम करने के लिए जो मन में आपके प्रेम भगवान का अनादि काल से पड़ा हुआ है वो जागृत हो जाएगा। तो आप लोग सब अब भगवान के सामने आरती कीजिए, आरती में कीर्तन कीजिए और उसके बाद भगवान का प्रसाद लीजिए। आपका धन्यवाद। हरे कृष्ण। बोलिए।
हम लोग अभी एक
जी